अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची लाहौर इस्लामाबाद भालपुर पिशावर सियालकोट दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 24 जमादी अल्लावल 1443 हिजरी दिसंबर की 29 तारीख सन 2021 सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक, लेकिन प्रोग्राम करेगा आपको एंटरटेन 9 बजे तक। ये हो गया बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस देकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आई होप आप लोग बिल्कुल फिट जा रहे होंगे एंड इट्स अ कोल्ड मॉर्निंग हियर इन कराची। और बारिश के बाद वैसे तो फिजा थोड़ी सी साफ हो जाती है, लेकिन कल कराची में जो है वो काफी हेजी सी फिजा जो है वो हो गई थी और इट वॉज प्लेजेंट, आई मीन इट वॉज पर्टिकुलरली वार्म इन द आफ्टरनून। लेकिन जो AQI इंडेक्स में कल कराची का देख रहा था कि वो अच्छे तेवर उसके जो है ना वो दिख नहीं रहे थे, लेकिन खैर चलें जी। ओके, बाकी बातें करते हैं बाद में मौसम के हवाले से एंड प्रोग्राम में। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ऑलराइट, हियर वी आर, सो वेलकम टू द शो। और मैंने भी अभी जो है ना अपने वो ट्विटर पे बस लॉग इन कर ही लिया है, बिकॉज मैं स्टूडियो में सभी दाखिल हुआ था और ये फलक साहब का गाना चल रहा था। फलक शब्बीर शायद नाम है, फलक शेर नाम, क्या नाम है, बहरहाल बड़े कुछ सर्टन हलकों में मुझे पता चला है कि बड़े पॉपुलर आदमी हैं ये, तो गुड ऑन देम। बट बहरहाल जी सीन क्या हुआ है, सीन ये हुआ है कि 7:26 हो चुके हैं और अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस जो है वो शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। लेट मी क्लिक ऑन द हैशटैग और देखते हैं हमारे कौन से दोस्त हमारे साथ इस वक्त जो है वो प्रोग्राम में मौजूद हैं। व्हाट आई डू राइट नाउ इज दैट आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड आई स्टार्ट विद द वेरी नाइस। आज का पहला ट्वीट तो रात में कुछ काफी रात गए का ट्वीट है, बट इसमें हैशटैग इस्तेमाल हुआ है। फरा मुश्ताक का मैसेज है, कहती हैं सो गॉट अ न्यू थॉट फ्रॉम यस्टरडेज शो दैट व्हेन यू आर पेड गुड यू रीड बुक्स, so feeling relieved. My nephew gave me this book to read last year. It's still on my side table. I think I can finish this book soon. Being optimistic. Okay, so you are reading Charlie and the Chocolate Factory. But I'll be very frank. I haven't read Charlie and the Chocolate Factory. लेकिन I have seen the movie. Especially Johnny Depp वाली जो film है. और वो Willy Wonka. And I like that movie actually. अच्छी मजेदार बच्चों वाली film है, लेकिन है मजेदार film थी. And I enjoyed that seriously. अच्छा मेरा ना मेरा कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था डॉक्टर साहिबा के जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं। नो एब्सोल्युटली नॉट। आई कल जो सवाल पूछा था, आई थिंक फहीम साहब ने, हमारे दोस्त ने पूछा था, वो मेरे बहुत सारे पैसे गैस उन्होंने कर दिया था कि मुझे बहुत पैसे रेडियो, बहुत ज्यादा पैसे रेडियो से मिलते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली इफ आई गेट पेड दिस मच दैट मोर देन मेक्स अप फॉर माई डे जॉब, then फिर I'll quit my day job and I'll do radio only, and then when I'll do radio only I'll have a lot of time at my disposal, and one of the उस time में जो है वो एक जो मैं काम कर सकता हूँ, I'm going to read the books। मैं बुक किताबें पढ़ने के मामले में बहुत लूजर हूँ, मगर फिर भी चलें जी कोशिश करेंगे। Alright, आसिफ मंसूर साहब मोजम्बिक में प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं man spends best part of his life earning money, happiness is forgotten and the means are taken for the end। Oh, that's my kind of a quote. There are thus gods of light and idols of mud, but it is essential to find the middle path leading to the faces of men. Albert Camus. चलें जी, बहुत अच्छी बात की है। और वाकई इंसान अपनी जिंदगी का जो बेहतरीन टाइम है वो दौलत कमाने में लग जाता है, पैसा कमाने में लग जाता है, मुआश की फिक्र में लग जाता है, और उस वजह से जो है वो अपनी जिंदगी की कुछ हसीन लम्हात को जो है वो सैक्रिफाइस कर देता है। ब्यूटीफुल थॉट आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब से भाई, आदाब आदाब आपको भी। मेनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम डूइंग फाइन। नजम साहब गुड मॉर्निंग सर। फहीम अली खान कहते हैं फाइनली विंटर हैज अराइव्ड इन कराची एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल विंटर लवर्स। यस एब्सोल्युटली विंटर्स हैव अराइव्ड इन कराची, और आज की सुबह जो है उसमें भी अच्छी अच्छी सर्दी है एंड नाइस वेदर इंडीड, एंड हमारे लिए नाइस वेदर। आई नो ये जो इतनी शदीद सर्दी होती है ये बाज लोगों के लिए काफी, हर शहर के ज़ाहिर अपने लिहाज से एक सर्दी होती है, लेकिन हमारे जो डोमिनेंट वेदर होता है शहर का वो जनरली लोगों को पसंद नहीं होता। आई नो ठंडे इलाकों के लोग जो हैं उनको सर्दियाँ इतनी पसंद नहीं होती, लेकिन कराची वालों के विंटर से जो मोहब्बत है उसका इजहार ज़ाहिर है आप मेरी टोन में और मेरी टॉकीज में भी जो है आपको अंदाजा हो जाता होगा. आसमा अवान कहती है भाई मौसम कैसा है, खुश रहें आबाद रहें. मौसम के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ. हसन इकबाल कहते हैं जनवरी इज कोल्डर बट डिसम्बर फील्स मोर ब्यूटिफुल. ऑलराइट. मोहम्मद अली रऊफ साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू. फहीम अली खान साहब कहते हैं ब्रो आई एम वॉचिंग ड्रामा सीरीज वाइकिंग, इट्स अ ब्रिलियंट ड्रामा सीरीज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, प्लीज वॉच, यू विल एंजॉय. ठीक हो गया सर, थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन. अहमद इकबाल का मैसेज आया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू. उसामा सईद ने लाहौर का वेदर के जो है वो मेरे साथ स्क्रीन शॉट शेयर किया है. इट सेज 5 degrees Celsius इन लाहौर, दैट मीन इज क्वाइट कूल, एंजॉय. एंड उसामा कहते हैं लाहौर इज अगेन द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, 232 AQI है यहाँ पे. तो वैसे बहरहाल जी जैसा माहौल, फिर वही बात है कि कंपैरेटिवली देख लें तो ये तो फिर भी बेहतर हो गया, लेकिन अल्लाह ताला बस बेहतर करे जी. डॉक्टर शैला थैंक यू सो मच, शैला के लिए अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम आपकी हमारी जानिब से. तहसीन हमजा साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कराची लाहौर ऑल ओवर पाकिस्तान फ्रेंड्स, फेवरेट प्लेस इज कराची, फेवरेट प्लेस इन कराची टू एंजॉय फिश. अच्छा यानी हम मछली खाना चाहते हैं एंड कराची में जो है वो सबसे अच्छी जगह जो है वो कौन सी है. देखिए आजकल जो कराची में सबसे फेमस फिश की जगह चल रही है वो यहाँ पे किमाड़ी पे जो है ये एक काफ़ी पॉपुलर जो है एक रेस्टोरेंट, क्या नाम है उसका यार, राशिद सी फूड, या आप वहाँ अल राशिद है या पता नहीं राशिद है. तो यार ये बेसिकली W11 का आखिरी स्टॉप है, यानी W11 यहाँ से यू टर्न मारती है, बिल्कुल मेन किमाड़ी पर है. जो किमाड़ी अपना आपको तो अंदाज़ा होगा तहसीन कराची के रास्तों का, तो यहाँ पर आप आइए, बिल्कुल फ्रेश फिश वहाँ पर मिलती है. आप खरीदें, फिश खरीदें, झींगा खरीदें और वहीं के वहीं बनवाएं और बारबेक्यू करें, उसकी कढ़ाई बनवाएं, जो करना है आपको करें. बल्कि मेरा ये ख्याल है कि अगर जो लोग कराची आने का इरादा रखते हैं और उनका सी फूड खाने का है तो वो अल राशिद को इतना जो है ना, वो राशिद रेस्टोरेंट को इतना कोई बहुत हाईफाई किस्म का, हाईटेक नहीं बना हुआ, बहुत ही देसी किस्म का वहाँ का सीन है. लेकिन डू विजिट, आई थिंक इट्स अ नाइस प्लेस. और खासतौर से आजकल के मौसम में जहाँ पे खुनकी है इतनी कराची में और शामें इतनी हसीन और खुशगवार हैं, वहाँ पे वहाँ साहिल समंदर के पास बैठ के, अच्छा वो साहिल समंदर वाला माहौल नहीं है वहाँ पे, ये भी मैं आपको बता चलूँ, वो किमाड़ी बहुत ही गंदी सी पोर्ट है हमारी, स्पेशली जो किमाड़ी की जो वो जेटी बनी हुई है उसको खैर अभी थोड़ा सा उन्होंने फेसलिफ्ट कर दिया, लेकिन वैसे वो इतनी साफ नहीं है, लेकिन वहाँ का माहौल है उधर चल रहा होता है, सीन ऑन होता है. तो भाई ये है भाई, अब बाकी अब कराची आ जाओ तो मैं रास्ता समझा दूंगा मैं ठीक से. वैसे W11 का आखिरी स्टॉप है, याद रख लेना ये. फरूख शाहब साहब सब लिसनर्स को जो है वो सलाम और सुबह बखैर कहते हैं, थैंक यू सो मच सर. मलिक का मैसेज आया है सर गिव मी सम गाइडलाइंस, इफ समवन वांट्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर CSS एग्जाम व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ही शुड हैव टू अडॉप्ट, व्हाट काइंड ऑफ GK ही शुड हैव टू क्लियर द टेस्ट. अब भाई देखिए मलिक साहब, ये तो फिर जिसने CSS का एग्जाम का भी दिया हुआ वो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर आपको इसमें गाइड कर सकता है. आई नो देर आर सर्टन ट्यूशन सेंटर्स जो कि इसकी बाकायदा तरबियत दे रहे होते हैं और अच्छी तरबियत दे रहे होते हैं, पूरा एक इंडस्ट्री है CSS के एग्जाम्स की प्रेपरेशन के हवाले से, और वो बाकायदा आपकी फिर आपकी जो है वो जनरल नॉलेज वगैरह इम्प्रूवमेंट पे भी जो है मेहनत करते होंगे, आई एम प्रिटी श्योर. सो आई थिंक जिसने दिया वो इम्तिहान वो ज़्यादा बेहतर पोजिशन में होगा गाइड करने के लिए. कोई अगर आना चाहे तो सनराइज विद अदील #, फॉलो कर सकता है, मलिक साहब का मैसेज वहां पे देख सकता है जो कि इन्होंने आपसे कुछ 6 मिनट पहले किया. वासिफ महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर. तुफैल जान साहब गुड मॉर्निंग. अच्छा इसके अलावा मिशाल जान, खुशाल जान, दानियाल जान, वी आर वेटिंग फॉर योर वॉइस अदील अंकल, हैव अ ग्रेट डे, सलाम, दैट्स ग्रेट, थैंक यू बॉयज एंड होप यू आर डूइंग गुड. आरिज लाइक कहते हैं इन एन एरा वेयर वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इनफ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस is the goal, inshallah. Arish, that is a brilliant goal to have, but what are you planning to do about it? That's I think the most important thing. And then we have got DJ Sumer, he says good morning, thank you. Ali Dar sahab ka aaya hai, please give your prediction on stock exchange market where the shares is likely to buy nowadays. Achhe shares, high dividend yield wale shares leke rakh le, aapko nuksan nahi hoga inshallah. Theek hai. शुएब जावेद साहब शिकागो में मौजूद हैं, मुझे लग रहा है आप छुट्टियां मनाने गए हैं शिकागो में और ज़बरदस्त बर्फ इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी दिनों से आप शिकागो में ही मौजूद हैं. बहरहाल जी इंजॉय योर टाइम देयर. तायरुल्ला खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, थैंक यू सो मच तायरुल्ला खान साहब. अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानेब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, beautiful soothing song. This was by Sajjad Ali. And आज काफी दिनों बाद चलाया भी ये गाना. एक जमाने में काफी चलाया करते थे लेकिन फिर प्लेलिस्ट से गायब हो गया था. But it's back now and what a beautiful song. All right, talking about मछली इन कराची. नुमान यूसुफ ने अच्छा उन्होंने मुझे बताया है नुमान यूसुफ ने कि राशिद सी फूड हैज ओपन्ड इन पोर्ट ग्रैंड एज वेल. चलें, दैट इज वेरी नाइस. ओरिजिनल वाला ही खुला होगा आई एम प्रीटी श्योर. और पोर्ट ग्रैंड अच्छी जगह है यार. आप कराची आए तो पोर्ट ग्रैंड भी जरूर आइएगा और ऐसी ठंडी शामों में वहां पे एक वॉक करें और खाने खाएं. एंड आई थिंक वेरी नाइस प्लेस दैट वाज बिल्ड. मुझे नहीं पता कि पूरा जो एक्सपेक्टेशन थी पोर्ट ग्रैंड से, वो जो बाबर गौरी साहब ने जिस वक्त यह प्लान किया था, वो उससे हम हासिल कर पाए. लेकिन फिर भी जो भी है, एटलीस्ट जिस शहर में काफी सारी ऐसे मकामात का फुकदान है, वहां पे पोर्ट ग्रैंड इज अ नाइस प्लेस. यू शुड विजिट इफ यू आर विजिटिंग कराची एंड कमिंग टू कराची. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जी फिश एट यादगार एंड हसन स्क्वायर इज प्रिटी फेमस टू. हसन स्क्वायर पे तो बाकायदा वो इतनी सारी, बेसिकली होता क्या है कि शाम में वहां पे फ्राइड फिश का एक बाजार लग जाता है. एंड उसमें काफ़ी सारे लीगल भी होते हैं जिनकी जो है ना बात सफाइयाँ भी हो जाती हैं, फिर दोबारा वो आ जाते हैं. उस जगह का नाम बाकायदा मछली मोड़ पड़ गया है. मेरे ख्याल से आई थिंक गूगल मैप पे भी, गूगल लिस्टिंग भी उसकी मछली मोड़ के नाम से जो है ना, मच्छी मोड़ के नाम से हो गई है. आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे. बड़ी रौनक होती है उधर यार. लेकिन मैंने वहाँ पे, मैं ईमानदारी की बात है नुमान, मैंने 14 साल से वहाँ पे मछली नहीं खाई. बिकॉज एक दफ़ा मैंने मछली खाई थी और मैं ऐसा, मेरा पेट खराब हुआ था. मेरा एक इंटरनेशनल दौरा जो है ना वो जेपर्डी में आ गया था. लेकिन फिर मैंने ड्रिप श्रिप चढ़वाई, सब कुछ किया, मेरा पेट ठीक हो गया. फिर मैं बहरहाल चला गया. फिर मैंने कुछ बोझा यहाँ मच्छी नहीं खानी मच्छी मोड़ पे. लेकिन यादगार की फिश अच्छी है. यस, न्यू टाउन की तरफ. एंड यार भूख बेदार हो गई, स्पेशली दैट आई हैवंट डन द ब्रेकफास्ट टुडे. सो या ग्रेन. ऑलराइट, वलीद मुगल साहब थैंक यू, गुड मॉर्निंग आपको. मुबीन अहमद साहब पिछले कुछ हफ्ते से प्रोग्राम सुन रहे हैं लाहौर में, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं. एंड गौहर खान का कहना है, आपका प्रोग्राम सुनते हुए दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं वाइल्ड ड्राइविंग, खामोश हाजिरी कबूल फ्रॉम पिशावर. नहीं नहीं बिल्कुल जी, आप जो है वो ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, मैसेजेस तो बहरहाल होते ही रहेंगे. इसके अलावा काजी शारिक साहब ने सुबह बखैर गुलशन म्यांमार से आपने मैसेज भेजा है. चलें जी, म्यांमार वालों ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया. अच्छी बात है, ये अच्छी बात है. म्यांमार में भी होते होंगे आई एम श्योर कोई ना कोई लिसनर्स. आरिश कहते हैं, आई बिलीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैन बी अचीव बाय गेटिंग प्लान इन प्लेस, फिगरिंग आउट योर स्ट्रेंथ एरियाज टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ एंड फाइनली क्रिएटिंग एन इनकम स्ट्रीम थ्रू डी सर्विसेज बाय वेंचर फ्रीलांस और इवन इन्वेस्टमेंट्स. यार दिस बॉय लुक्स लाइक ही हैज गॉट अ प्लान. आरिश वेल डन मैन. और ही इज अ बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस फास्ट के स्टूडेंट है और लिखा हुआ है गुड गाय. चलो गुड गाय. यस यार, पता है छोटी एज से फाइनेंशियल प्लानिंग जिस तरह की तुम बात कर रहे हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग. हमारे यहाँ लड़के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीयों से पढ़ के आ जाते हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ टू मैनेज देयर मनी. और हमारे यहाँ एज अ सब्जेक्ट उन चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अपने जो फ्यूचर इनकम है इसको मैनेज किस तरह करना है, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो है ना वो लोगों को बताई नहीं जाती हैं, जिसका नुकसान होता है जाहिर है. और बहरहाल चलें जी. फौजिया उस्मान कहती हैं, 15 साल से प्रोग्राम सुन रही हैं, पहला ट्वीट है. वाओ दैट इज सो कूल, 15 साल से आप प्रोग्राम सुन रही हैं. फरजाना सरफराज ने मैसेज किया इस्लामाबाद से, सलाम अदील भाई, मैंने कल आपको बहुत अच्छा शेयर सेंड किया था बट यू डिड नॉट ऑनियर इट. और प्रोग्राम ऑफिस जाते हुए सुन रही होती हैं. असल में पता है फरजाना इशू जो है ना वो ये है कि यार ये शेर व शायरी ज़रा पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली अगर वो रोमन में लिख के भेजा हुआ हो. और मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन शेर पढ़ते हुए मैं कोई ना कोई गलती कर देता हूँ ऑन एयर, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा शेर को जो है ना मैं अवॉइड करके आगे निकल जाता हूँ. सो और भी हम बातें कर सकते हैं, और भी बातें कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, शारिक किदवाई साहब का मैसेज आया है, कहते हैं जी सजाद अली साहब का ग्रेट सॉन्ग सर. मोहम्मद शामी took 5 wickets against South Africa, concluding 200 wickets. Both Virat and Shami must be feeling better now. Yeah, indeed. And I think India are in complete control in that match right now. They are leading by 146 runs at the end of day 3. Or I think Mohammad Shami was good yesterday. याद रहे इंडिया ने पहली इनिंग में 327 रन बनाए थे, जवाब में साउथ अफ्रीका 197 रन बनाकर जो है वो आउट हो गया था. एंड एज शारिक साहब सेड, शामी गॉट 5 विकेट्स. एंड या विल बी फीलिंग रिलीव्ड फॉर श्योर, बिकॉज शामी आपको पता है कि वर्ल्ड टी20 में काफी ज्यादा उनको जो है क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया था. ऑलराइट, आज तमाम नजरें एक बार फिर से विराट कोहली की तरफ होंगी. और जब उनकी बैटिंग अगर आ भी गई उनकी, और उससे पहले इंडिया ने अगर डिक्लेयर नहीं किया, सो कोहली कितने रन बना सकेंगे, बिकॉज जाहिर है इट्स बीन अ सेंचुरीज लॉन्ग ओवरड्यू. खेलों के हवाले से तफसील से हम बात करेंगे, एंड देयर इज सम डिस्कशन. फुटबॉल का भी जिक्र होगा, बिकॉज कल एक और कल प्रीमियर लीग में जो है ना वो एक छोटा सा अपसेट हुआ है. हमारे एक दोस्त हैं जो कि लिवरपूल के बड़े सपोर्टर हैं, और वो लिवरपूल के जो सपोर्टर हैं वो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड का मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है जी, और आज उनकी अपनी टीम को जो है ना वो शिकस्त हो गई है. सो इस पे हम बात करेंगे आगे चल के, बिल्कुल करेंगे बात. और अपसेट शिकस्त मैं तो कहूंगा इसको, बिकॉज लेस्टर की काफी कुट लग रही है बाकी सारे क्लब्स के हाथों, लेकिन वहां पर उन्होंने लिवरपूल को हरा दिया. ग्रेट रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी फॉर श्योर. ओके जी, अकरम फिश एंड गुलशन इकबाल मच बेटर इन टेस्ट एज कम्पेयर टू राशिद, ये कहती है महनाज नवीद. ठीक हो गया जी, कराची के मच्छी रेस्टोरेंट्स की काफी डिटेल हमें जो है ना वो आज मिल रही है. ओके जी, आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 अनाउंसमेंट हो गई है. एंड वेल सरप्राइजिंगली देयर इज नो पाकिस्तानी इन दैट लिस्ट, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वन, लेकिन खैर एनीवे. तो काइल जेमिसन इज देयर, जो रूट, अश्विन एंड करुणा रत्ने. आगे चल के प्रोग्राम में इसके हवाले से हम बात करेंगे, बिकॉज पाकिस्तानी हम लोग जो है वो थोड़ा सा नाराज हैं इस चीज के हवाले से, ठीक है. एंड इसके अलावा यस्टरडे वलीद कहते हैं, यस्टरडे आई वाज एट द एयरपोर्ट, लोगों ने सिगरेट पी कर हॉल में फेंके हुए थे. और यार छोड़ दे यार, हम ऐसे ही गंदे गलीज लोग हैं हम पाकिस्तानी, कोई कानून कोई चीज जो फॉलो करनी हो हम लोगों को, और फिर जो है ना मुल्क को गालियां देना और मुल्क को बुरा भला कहना और ये सारी चीजें चलती हैं, नहीं होता भाई, नहीं होता. हमारे मुल्क में कोई नई कानून को इम्प्लीमेंट जहाँ करवाना चाहे, यही जो सुट्टे मारने वाले अभी किसी तरह पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे, इनसे ज्यादा इंसान का बच्चा जो है ना वो जाहिर है कोई भी नहीं होगा. लेकिन खैर चलें जी, ओके अभी क्या सीन है जी, आगे चल के हम प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे कोविड स्पाइक के हवाले से. यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उसमें जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो एक नया रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं. ओमिक्रॉन जो वेरियंट है वो काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये तमाम ममालिक जो हैं ये अपनी टेम्पटेशन को रोक के बैठे हुए हैं किसी भी तरह के लॉकडाउन लगाने के हवाले से, और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन का दौर जो है वो अब जा चुका है. ठीक है, इस पे बात हो जाएगी. अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बात करूंगा बोइंग 737 मैक्स के हवाले से. एंड इंडोनेशिया हैज बिकम द रीसेंट कंट्री टू लिफ्ट अ बैन फ्रॉम दैट एयरक्राफ्ट. और इंडोनेशिया का जाहिर है काफी दर्दनाक मेमोरीज हैं इस जहाज के साथ, 737 मैक्स के साथ, इफ यू गाइज माइट रिकॉल. बट बहरहाल अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, गाना भी सुन लेते हैं छोटा सा, और फिर हम जो है वो आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप प्रोग्राम में ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. All right, that was Atif Aslam with Chale To Kat Hi Jayega Safar. Hope you guys enjoyed that song. And अच्छी एफर्ट है, बुरी नहीं है वैसे. ओरिजिनल की तो क्या बात है बीनिश, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, सही लगता है मुझे. ओके चले जी, अब वक्त हो गया आज के अखबारात में जरा खबरों पर नजर डालने का. एंड लेट्स सी व्हाट द न्यूज़पेपर आर टॉकिंग अबाउट. ओके, मेमुना लाइक्स दैट सॉन्ग, दैट इज कूल. She loved that. Okay. And America is planning to legalize marijuana. What are your thoughts? Ubaid Hasan. Sir, America ki riyasatein khud mukhtar hain marijuana ko legalize karne ke liye. Aur America ki bahut sari riyasatein already marijuana ko, jo wahan ki liberal riyasatein hain, wo already usko legalize kar chuki hain. So, koi chinta nahi hai. Mamla pehle hi kafi had tak jo hai na wo solve ho chuke hain. Chalein ji, kya likhte hain akhbarat. वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ साजा, देखें इस वक्त आपको पता ना कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि ये इस वक्त कौम के पास नया झुंझुना जो आ गया है वो मियां साहब की वापसी के हवाले से. तो उसके हवाले से कल वफाकी हुकूमत जो है ना वो थोड़ी एक्टिवेट हुई है, और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. डॉन का लिखना है, नवाज वोंट रिटर्न, ही विल बी ब्रॉट बैक. ओहो, नवाज शरीफ वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाएंगे. शहबाज ने नवाज शरीफ की वापसी की जमानत दी थी. वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देगी. साबिक वजीर आजम को कहा था जुर्माना अदा करें, बाहर चले जाएं. आपको याद हो कि हुकूमत ने तो बहुत बड़ी जरे जमानत जो है उसकी बात की थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक मैसिव रिप्रीव मिला था मियां साहिबान को, और जो छोटे मियाँ साहब थे वो गारंटोर बन गए थे कि नवाज शरीफ साहब ना इलाज कराने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों की बात हो रही थी कि वो वापस आ जाएंगे, और उस बुनियाद पे जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की जो ज़रे ज़मानत थी उसकी रिक्वायरमेंट को नलिफाई करके उनको सिर्फ वही एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। बहरहाल अब हुकूमत जो है वो तो लकीर पीटती रह गई थी, और आपको उस वक्त अंदाज़ा भी हुआ था कि ये कितने बेबस हैं कुछ मामलों के हवाले से, लेकिन अब हुकूमत इस मामले पर अग्रेशन दिखाना चाह रही है और वो ये शो करना चाह रही है कि जी मियाँ साहब अपनी मर्जी से वापस नहीं आ रहे बल्कि हम उनको वापस लेकर आ रहे हैं। चलें जी देखते हैं क्या होगा। मिनी बजट की मंजूरी का इम्तिहान, अपोजिशन के हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों से राब्ते, काबीना का खसूसी इजलास एक दिन के लिए मौखर, वजीर आजम कल हुकूमती इत्तेहादी अरकान को फाइनेंस तरमीमी बिल पर एतमाद में लेंगे, काफ लीग ने मिनी बजट पर मशावरती इजलास आज तलब कर लिया। अच्छा जी, आपको पता है सीन क्या हुआ, कल ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे को जो है वो वफाकी काबीना का इजलास होता है जिसमें मिनी बजट जिसको कहा जा रहा है, यानी हुकूमत जो है वो बहुत सारी टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म करने का इरादा रखती है, जीएसटी बढ़ाने का उनका प्लान है, एक यूनिफॉर्म जीएसटी बेसिकली वो लेकर लाना चाहते हैं 17% पे, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे पुरतायुश अशिया जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो जाएंगी, और जाहिर है जो गैर तायुश अशिया हैं वो भी महंगी होनी होनी है, जाहिर है वी नो दैट। सो उसके लिए जाहिर है पॉलिटिकली अनपॉपुलर स्टेप होगा, लेकिन आईएमएफ की अगली किस्त की अगली ट्रेंच है उसके लिए ये काम करना पड़ेगा, और हुकूमत ने कल इसका ख्याल था कि जी काबीना से अप्रूवल ले लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने इस राउट को जो है वो नहीं अपनाया, उन्होंने कहा जी काबीना के अप्रूवल से पहले जो इत्तेहादी जमाते हैं, इनकी काफ लीग है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, ये जीडीए वाले हैं और बाप वाले हैं, इनसे पहले बात की जाएगी और इनको एतमाद में लिया जाएगा, और फिर उसके बाद काबीना से मंजूरी के बाद इसको कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। लेट्स सी, काफी धमा चौकड़ी मचने वाली है कौमी असेंबली में इस चीज के हवाले से। ओके, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, जब भी हियरिंग होती है तबाही किस्म की खबरें आ रही होती हैं, एकदम सनसनी खेज दिन लगे रहते हैं, बिजी रखती है सुप्रीम कोर्ट यार। कराची रजिस्ट्री तो खास तौर से तो कुछ खास पुरौनक जगह है। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, कल उन्होंने एक और फैसला दिया है, बड़ा दिलचस्प फैसला दिया है, कराची के बिजी कारोबारी इलाके तारिक रोड की एक मस्जिद है जिसको उन्होंने कहा है कि गिरा दें। ओके जी, गिरा दें। ओके, इसके अलावा क्या कहते हैं जी, कोई इबादतगाह गैर कानूनी अराजी पर नहीं बन सकती, पार्क की जमीनों से तजावुजात खत्म की जाएं। तो ये पार्क की जमीन थी और वहां पे जो है ना वो मस्जिद बना दी गई, तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा ये मस्जिद बड़ी पॉपुलर है और वहाँ के जितने कारोबारी लोग उधर, मेरा भी इत्तेफाक हुआ है क्योंकि घर के करीब है मेरे, तब मेरा भी इत्तेफाक हुआ तारिक रोड, एक दफा गया तो वहाँ मैंने नमाज पढ़ी, पता चला है जी और इट्स लाइक मैसिव कॉम्प्लेक्स है, वो नीचे बेसमेंट भी बनी हुई है, ऊपर भी कई फ्लोर मंजिल उसकी है। उन्होंने कहा जी गिराएं इसको, ये पार्क की जगह है, यहाँ पे पार्क बनाने उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया, एक हफ्ते में तो खैर ये नहीं होगा काम, लेकिन फिर भी बहरहाल। इसके अलावा किडनी हिल पार्क में जमीन बागुजार, किडनी हिल पार्क बड़ा जबरदस्त एक प्रोजेक्ट है और इस पे बड़ी मेहनत की गई है, लेकिन आप किडनी हिल पार्क में देखेंगे आपको बड़ा साफ नजर आ जाएगा। भाई यार, कराची के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, सुना है उन्होंने भी जमीन पे कब्जा किया हुआ है वहाँ पे, उन्होंने अपना बगीचा बना लिया है वहाँ पे, उन्होंने अपनी पर्सनल प्राइवेट पार्टियां होती हैं, एक स्कूल ने भी कब्जा कर लिया था और पता नहीं क्या सीन है, अब देखते हैं जी क्या होता है। अच्छा जी, मस्जिद मजार और कब्रिस्तान खत्म कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ मजार बना हुआ है उधर ना, एक तो आपको पता है हम पाकिस्तानियों को ये बड़ी आदत है ना, जहाँ कब्जा करना हो वहाँ एक बाबा जी को भी दफना देते हैं, पता नहीं, मैं तो कहता हूँ एक्सरे कराओ जरा, अंदर कोई बाबा जी है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन ये किडनी हिल के अंदर भी एक बाबा जी उन्होंने दफनाए हुए हैं, तो उन्होंने मस्जिद भी तो पहले मस्जिद पहले ही गिरा दी थी जो किडनी हिल के अंदर बनी हुई थी, अब वो मजार भी गिराने की जो है ना बातें हो रही हैं कि इसको भी गिरा दें, तो बट ठीक है हो गया, ये तो गेम ऑन हो गई। आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है। इसके अलावा नस्ला टावर की तामीर की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा, एंटी करप्शन का रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। ओके, एंड देन वी हैव गॉट तौहीन अदालत, राणा शमीम समेत दीगर मुलजिमों पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। राणा शमीम ने लिफाफा खोला, बयान हलफी आपने सील किया। अबे यार, ये तो कल बड़ी जबरदस्त हुई है इसकी ना कार्रवाई, राणा शमीम साहब और इनका जो है ना वो लिफाफा डीएचएल का लिफाफा वो लेकर आए, उन्होंने पेश किया है वहां पे, और कल हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब थे वो काफी ज्यादा जो है ना वो फॉर्म पे नजर आ रहे थे, और खालिद जावेद साहब अटॉर्नी जनरल वो काफी फ्रंट फुट पूरी कार्रवाई में, और बिल्कुल क्लियरली ऐसा लग रहा है कि राणा शमीम साहब और उनकी टीम जो है वो इस वक्त डिफेंस पर है और शदीद डिफेंसिव पर है, लेकिन देखते हैं जी अब 7 जनवरी को इन पर फर्द जुर्म जो है आयद होने वाली है, जिसमें जो आपके जर्नलिस्ट साहब हैं और इसके अलावा जहाँ से अंसार अब्बासी साहब जिन जंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके मीर शकील उर रहमान और इन लोगों पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी जाहिर है इस पूरे मामले के हवाले से. एंड लेट्स सी ये मामला कहाँ पर जाता है. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का इस वक्त हुआ है. वक्त मिलेंगे आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. एंड बाकी का सीन है, सीन ये हुआ है कि जी जल्दी से खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं जिनको हम थोड़ी देर में प्रोग्राम में ऑफकोर्स शामिल कर रहे होंगे. अच्छा डॉक्टर जीशान साहब, एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है यार, आपके ट्वीट सम हाउ इस हैशटैग में म्यूट हुए हैं. लाइक वे आई कैन रीड योर ट्वीट बिकॉज आप मुझे भी टैग करते हैं. सो आइदर यू आर यूजिंग द रॉन्ग हैशटैग टुडे या क्या हो रहा है, बिकॉज आई डोंट सी योर मैसेजेस इन द हैशटैग. आई डू सी इट ऑन माय टाइमलाइन, बट कुछ है गेम सर, जरा आप चेक तो कीजिए. डॉक्टर जीशान को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ. ओके, खेलों के हवाले से हम बात करते हैं और चलें बताएं इनको यार, बोलो 10 मिनट पहले ले आया करो यार. चलें गुड, अभी क्या सीन हो गया, सीन ये हुआ. चलें खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. और जी सबसे पहले तो एशेज का तो हमने कल जिक्र कर ही दिया है कि इंग्लैंड को तो बहुत बदतरीन शिकस्त हुई है और उसके आफ्टर शॉक्स कल सुनने में आ रहे थे. जाहिर है इंग्लिश टीम हैड एब्सोल्युटली नो चांस, यानी उन्होंने तो एक पर से भी उड़ने की कोशिश नहीं की यार. बिल्कुल तबाही तबाही फिर गई है बिल्कुल इंग्लैंड की टीम के साथ. बट बहरहाल अभी का सीन है. अच्छा बाय द वे इंग्लैंड ने अपना रिकॉर्ड बराबर कर दिया. आपको ये भी पता है सबसे ज्यादा शिकस्तों का जो उनका रिकॉर्ड था, एक साल में 9 शिकस्तें वो टेस्ट में खा गए. अच्छा और हमने कल मोहम्मद यूसुफ की भी बात कर ली थी, मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड बच गया. तो ये टॉपिक्स हम निपटा चुके हैं सारे जी. अब जरा बात कर लेते हैं सेंचुरियन टेस्ट के हवाले से जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है वो जारी है. और इसमें इंडिया इज इन कंट्रोल ऑफ दिस मैच राइट नाउ. पहले खेलते हुए इंडिया ने पहली इनिंग में 327 रन बनाए थे और जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जो है वो 197 रन बनाकर आउट हो गई थी. साउथ अफ्रीका की जानिब से सिर्फ 2 प्रोमिनेंट स्कोर थे. टेंडे बाबूमा ने बनाए 52 रन और क्विंटन डीकॉक जो है वो 34 रन बनाने में कामयाब हुए. इन दोनों के दरमियान जो 5वीं विकेट की पार्टनरशिप थी उसमें कोई 72 के करीब रन बने. उसके अलावा बाकी देयर वाज नथिंग वर्थ मेंशनिंग अबाउट. एंड में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जो है वो कैगिसो रबादा की जानिब से रही जिन्होंने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाए. इंडिया की जानिब से पिक ऑफ द बॉलर्स वाज मोहम्मद सामी जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया 44 रन देकर. जसप्रीत बुमराह गॉट 2 विकेट्स एंड मोहम्मद सिराज गॉट 1 एंड शरदुल ठाकुर गॉट 2 विकेट्स एज वेल. इंडिया ने दूसरी इनिंग का आगाज किया. दे हैड एन अर्ली लॉस. मयंक अग्रवाल जो है वो 4 रन बनाकर आउट हुए यंसन की गेंद पर. और इस वक्त केएल राहुल 5 और शार्दुल ठाकुर जो है इज बैटिंग ऑन 4 राइट नाउ. सो एज आई सेड अर्लियर इंडिया आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस मैच. सेंचुरियन पहला टेस्ट मैच एंड गुड स्टार्ट ऑफ द सीरीज सो फार फॉर देम. ओके जी, कल आईसीसी ने अपने टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो है वो ऐलान किया है. और उसमें ऑफकोर्स पाकिस्तानी थोड़े से नाराज दिख रहे थे और नाराज इसलिए दिख रहे थे बिकॉज नो पाकिस्तानी वॉज नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड. और इसमें जो रूट इज देयर, रविचंद्रन अश्विन इज देयर, काइल जेमिसन एंड करुणा रत्ने, ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको नॉमिनेट किया है आईसीसी ने अपने टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर. पाकिस्तानीज वुड हैव वांटेड टू सी शाहीन शाह अफरीदी देयर एज वेल. और क्योंकि शाहीन शाह हैड अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ईयर, ही गॉट 47 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 17. लेकिन इंडियंस जो है वो पाकिस्तानियों को ये स्कूल कर रहे हैं कि आप जो है आपने हल्की टीमों के खिलाफ विकटें ली हैं, इसकी वजह से आपको जो है वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे. नहीं किया आपको इस वजह से, इंडियंस ये कह रहे हैं. बिकॉज कल मैं वो गेम सेट मैच शो में सवेरा के साथ बैठा हुआ था तो सवेरा ने वो क्लिप जो है वो शेयर किया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया. और जब रीट्वीट किया तो सवेरा हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलोइंग इन इंडिया एज वेल. सो वो इंडियंस के कॉमेंट्स आ रहे थे और वो पाकिस्तानी तो रोतू हैं. और असली इंडियन बोल रहे हैं पाकिस्तानियों को रोतू हैं. सोचें यार, आप तो छोटी टीमों के साथ खेलते हैं, छोटी टीमों के खिलाफ विकेट लेना इंपॉर्टेंट थोड़ी है. काइल जेमिसन प्लेयर ऑफ द ईयर था, इन प्लेयर ऑफ द फाइनल था ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. यानी एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप उसको कह रहे हैं कि जी उसको जो है ना वो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड. उसको तो उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवार्ड मिल गया ना, बस काफी है. तो बहरहाल ये तो खैर सिलसिला चलता रहेगा. लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट नो पाकिस्तानी इज देयर एंड वी वुड हैव वांटेड टू सी देम. बट बहरहाल ठीक हो गया जी. एक तो हो गया ये बात, और दूसरा जो है वो क्या सिलसिला है. हाँ, इस वक्त काफी ज्यादा फटा चल रहा है यार पीसीबी की ब्रॉडकास्ट मीडिया राइट्स की बोली के हवाले से. और इसमें आपको पता है कि एक कंसोर्शियम है जो कि पाकिस्तान टेलीविजन और ए टीवी जो कि ARY ने अपना नया स्पोर्ट्स चैनल शुरू किया है वो उसके हवाले से जो है उनको ये बोली कि इनको राइट्स दिए गए हैं 2 साल के लिए कवरेज के हवाले से, जिसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये दावा है कि इसमें काफ़ी अच्छी इनको बढ़ोतरी मिली है और इम्प्रूवमेंट आई है. आई थिंक 54% की मेरे ख्याल से इन्होंने बात की है कि इनके टीवी राइट्स की इनको बेहतर बोली मिली है. इनके मुकाबले में जियो सुपर की बोली आई थी, लेकिन आपको पता है दैट जियो सुपर इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फस अबाउट दिस थिंग बिकॉज वो ये कहते हैं कि बोली तो हमारी ज्यादा बड़ी थी और फिर हमें जो है ये राइट्स क्यों नहीं दिए गए. सो बहरहाल ये इस पे पीसीबी ने जो है वो इसके हवाले से कल एक तफसीली अपनी रिलीज जो है वो निकाली है और उसमें उन्होंने जो है वो उन्होंने इस पूरे अमल की जो है वो वजाहत की है. ऑनेस्टली मैंने अभी वो पढ़ा नहीं है तफसील, मैंने पढ़ा है लेकिन जरा थोड़ा सा एक क्रिटिकल आई के साथ जो है ना अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो पढ़ के मैं जो है ना इंशाल्लाह आपके साथ ये शेयर करूंगा. ऑलराइट, बाकी का सीन है, बाकी ये सीन है कि फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस आपको पता है कि इस वक्त मैं रोजाना ही जिक्र कर रहा हूँ, काफी ज्यादा मुतासर हो रहे हैं ओमिक्रॉन इस वेरियंट की वजह से कोविड के, लेकिन फिर भी बहरहाल कल मैचेस खेले गए और कल एक बड़ा रिजल्ट आया है. और जो बड़ा रिजल्ट आया है कल वो आया है लिवरपूल लेस्टर और लिवरपूल, लेस्टर वाज होस्टिंग लिवरपूल और इस मैच में जो है वो कामयाबी हासिल की लेस्टर ने 1-0 से. एंड आई हैव टू से दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ अपसेट बिकॉज लेस्टर इस सीजन में इतना कुछ स्पार्कल नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कि ये फतह जो है वो उनके सीजन में एक ब्रेंडन रॉजर्स की साइड में एक नई जो है वो रूप फोंक दे. होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो चीज़ है वो ये है कि कल उन्होंने बाहर लिवरपूल को शिकस्त देना बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है. बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस नतीजे का मैनचेस्टर सिटी को, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी नाउ हैज गॉट अ 6-point लीड ओवर लिवरपूल एंड दे आर लिवरपूल एंड चेल्सी दोनों के 41-41 पॉइंट है. एंड 6-point लीड कैन बी वेरी क्रिटिकल गोइंग इन टू द न्यू ईयर ब्रेक. सो या अभी मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला है, दे विल बी ट्रैवलिंग टू आर्सेनल ऑन द न्यू ईयर डे पे जो मैच होना है सैटरडे को. सो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया, स्पेशली लिवरपूल एंड चेल्सी विल बी लुकिंग एट दैट मैच वेरी वेरी क्लोजली. और अगर आर्सेनल मैन सिटी को हरा तो नहीं सकता, लेकिन अगर इस मैच को ड्रॉ भी करने में कामयाब हो गया आर्सेनल, सो मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी. कल एक रिजल्ट अच्छा रहा जी, मेरा मतलब है आर्सेनल के फैंस के लिए अच्छा रहा, टॉटनहम का मुकाबला साउथहैम्पटन के साथ था और ये मुकाबला 1-1 गोल से जो है वो बराबर रहा. सो टॉटनहम लूजिंग देयर 2 points देयर. अभी भी रिमेंबर दे हैव प्लेड ओनली 17 गेम्स और 35 पॉइंट के साथ वो छठी पोजीशन पे हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज आल्सो प्लेड 17 गेम्स. सो बहरहाल जी अब न्यू ईयर ईव के मैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं एंड इट्स अ वेरी बिजी टाइम न्यू ईयर के जो ये 3-4 दिन होते हैं इसमें काफी सारी फुटबॉल हो रही होती है. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले, अभी बस आधा एक मिनट है. जफर अहमद खान साहब कहते हैं इस्लामाबाद मॉर्निंग विद फ्रॉस्ट ऑन कार करंटली 3 degrees Celsius. वाओ. ऑलराइट एंड देन वी हैव गॉट वलीद मुगल साहब ने इस गाने को बड़ा एंजॉय किया, तो फैल जान साहब ने भी कहा आतिफ असलम का कमाल गाना था. ओके जी, तनवीर सिद्दीकी ऑल्सो सेड गुड मॉर्निंग स्वीट सॉन्ग दैट इज गुड. अताउर रहमान साहब ठंडी ठंडी सुबह एंजॉय कर रहे हैं फ्रेयर हॉल के बगीचे में. एंड इसके अलावा उमेर बाबर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आपके शहर के इंतहाई मेहनती और दर्दमंद गैर सियासी एडमिनिस्टर मुर्तजा वहाब की इज्जत अफजाई करती है और आप खामोश रहते हैं, क्या ये ज्यादती नहीं है? कितनी रो रो कर माफी मांगी थी उसने, एक ट्वीट तो बनता था आपका. हाँ यार, ट्वीट बनना चाहिए था, मैंने पता नहीं इस हवाले से कल क्यों बात नहीं की, लेकिन मुर्तजा वहाब को पहले तो फारिग कर दिया और फिर देखिए मुर्तजा वहाब को जैसे ही उन्होंने फारिग किया सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा लीडर बनने वाला है, मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी में ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत होती है. लेकिन फिर उसने माफी मांग ली और अब वो वापस आ गया है. सो हिसाब किताब बराबर हो गया, तो अब क्या कहा जा सकता है इसमें, मुझे बताएं उमेर. इसके अलावा अहमद रजा साहब फ्रॉम पसरूर आपका मैसेज आया है और कहते हैं सर डू आर पोलिटिकल टॉक शो प्रेजेंटर्स डू देयर ऑडिट दैट द प्रोग्राम्स what they have done in the past years were real or on the base of selfish speculation and what our nation has gained just time pass or fraudulent. acha basically aap kehna ye cha rahe hain, mere khayal se i think अहमद रजा साहब हैज गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट. और देखिए दो बातें, एक तो मुझे इतना पता है कि हमारे जो न्यूज़ के एंकर्स होते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया और देखा है, इनको इनको इनकी बड़ी मायोपिक सी इनकी इन्फॉर्मेशन होती है. आप जरा सा टॉपिक से डिविएट कर जाएं, दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नो आइडिया. बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी तावीलें करेंगे. कुछ हमारे एंकर हैं जिनकी रिसर्च टीम बहुत अच्छी है. देखिए रिसर्च टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अभी मैं टीवी में बैठ के आजकल थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा ही हो रहा है हाउ इम्पोर्टेंट अ गुड रिसर्च टीम इज. बट हैविंग सेड दैट, ये जो पॉइंट बता रहे हैं वो ये कि जी कोई साहब बैठे हुए हैं कि जी मेरी चिड़िया ने मुझे ये बताया, कोई साहब कहते हैं मेरे बागड़ बिल्ले ने मुझे ये बताया, कोई साहब कहते हैं जी मेरी फाख्ता ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है. वो ये कहते हैं कि क्या ये कभी एक साल पुराने जाके अपने प्रोग्राम्स देखते हैं और कहते हैं कि जी मैंने तो कहा था कि जी 6 महीने बाद ऐसा होने वाला है, और 6 महीने बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ना इस तरह के कुछ इंडिपेंडेंट कुछ रिसर्च एजेंसीज होनी चाहिए, जो कि जिस तरह के दावे हमारे एंकर हजरात जो हैं वो कर रहे होते हैं. बिकॉज हमारे कुछ एंकर हजरात इस तरह का कुछ माहौल बनाते हैं जैसे इस मुल्क को क्या हर चीज़ को चलाने वाले ये लोग हैं, ये सारा का सारा काम जो है ना ये गोरख धंधा यही लोग चला रहे हैं, और सब कुछ इनको पता है, सब कुछ इनकी आंखों के सामने हुआ है. और इस तरह की कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि एक तरह का फैक्ट चेक करे कि जी आपने आज से 3 महीने पहले ये बात की थी कि 2 महीने बाद ये हो जाएगा, 1 महीना इसको हो चुका है और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है. सो बहरहाल, लेकिन ऐसा कौन करेगा ये भी सोचने की बात है. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार बहुत दिनों से वैसे ये लैला ओ लैला सुना नहीं अली जफर की आवाज में, और सुनते हैं इसको, चलाते हैं इस गाने को. ठीक है, ऑलराइट. अकील भाई थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग. एंड माजिद इकबाल साहब कहते हैं, डियर अदील, आई एम फ्रॉम म्यांमार, आई आल्सो फॉलो योर शो एंड आई नो मल्टीपल पीपल हु फॉलो यू फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ कराची, दैट इज वेरी नाइस टू हियर सर. मैसेजेस जरा कम आए म्यांमार से, इसलिए जो है ना वो जरा पता नहीं है कि हुआ क्या सीन है. लेकिन देन वी हैव गॉट आसिम इखलाक साहब कहते हैं, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग सेल्स टैक्स ऑफ 17% ऑन लोकल प्रोडक्शन ऑफ शूज एंड अपैरल. भाई सेल्स टैक्स एक बहुत ही जालमाना किस्म का टैक्स होता है, आपको पता है कि बहुत ही एक गलत टैक्स होता है. उसकी रीजन यही है, सेल्स टैक्स इतने हाई सेल्स टैक्स होने की वजह यह होती है कि हम पाकिस्तानी डायरेक्ट टैक्स जो है वो पे नहीं करते. सो लेट्स सी, बहरहाल अब अपैरल, अब बहुत सारी दुकानों पे तो ऑलरेडी सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा. लेकिन ये, अरे यार आपने क्या वाकया याद दिला दिया मुझे यार, मैं क्या बात करने वाला था. देखिए भाई बात सुने यार, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई. यस आई नो देखिए सिचुएशन वेरी एंड ऑल, लेकिन आपको ये बात भी बताया कि एक मुल्क का एक मखसूस तबका होता है जो कि एक्चुअली चला रहा होता है इकोनॉमी को ना, दे गो आउट देयर, दे स्पेंड द मनी. अभी मुझे ऐसे ही एक शौक हुआ, एक मखसूस रंग का मुझे ना अपना जैकेट सिलवाना था. जैकेट से मुराद वो जो कोट वाला जैकेट जो होता है ना, वो सिलवाना था मुझे. तो मैं एक दुकान गया, मैं नाम नहीं ले रहा उसका यार, मैं गया उनके पास, मैंने कहा भाई ये जैकेट सिलवाना है. उन्होंने कहा सर बिल्कुल शौक से सिलवाइए सर, ये है पाकिस्तानी कपड़ा, ये है जापानी, ये कोरियन है, ये इटालियन है. तो मैंने कहा यार क्या मुझे दिखा रहे हो यार, दिखाओ सस्ते वाली चीज़ें दिखाओ. कहने लगा देखिए सर आप जो भी कपड़ा लेंगे 1.5 महीने से पहले हम आपको जो है ना वापस नहीं करेंगे. मैंने सी के नहीं, मैंने कहा 1.5 महीना में क्या हो गया, फरवरी के मिड की उन्होंने जो है ना टाइम लाइन. कहने सर रश इतना है, ट्रैफिक. मैंने कहा लेकिन पाकिस्तान में तो हालात बहुत खराब है. कहने हमारे हालात तो खराब नहीं है. मैंने कहा यार अजीब सीन चल रही है यार, मैं देखता हूँ सिचुएशन कोई अजीब, पाकिस्तान तो तबाही के दाने पे और यहाँ पे मैं कोट सिलवाने जा रहा हूँ तो वो 1.5 महीने से पहले जो रिटर्न नहीं कर रहे. कह रहे सर इतनी शादियाँ हो रही हैं और इतने खर्चे, पता नहीं क्या सीन चल रहा है. ओ भाई ये कौम ये भी एब्जॉर्ब कर लेगी, मैं आपको बता रहा हूँ. ये हमारे यहाँ जरा बस क्या मैं बोलूँ यार. एनीवे अभी जो है सीन वो ये है कि ज़ीशान हैदर साहब कहते हैं, शौकत तरीन ने तो कहा था कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, तो भाई उसको मिनी बजट बोलेंगे ही नहीं. वो किसने कहा वो मिनी बजट, ये मिनी बजट तो मीडिया यूज करती है टर्म. शौकत तरीन साहब कहते हैं ये कोई मिनी बजट थोड़ी है, ये तो सिंपल सी बात ले, मैंने आपका सोल्यूशन निकाल दिया. ज़ीशान बयानी साहब का मैसेज आया, और ज़ीशान बयानी साहब जो है वो ये कहते हैं कि हेलो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द ईयर. ओए अबे कह रहे हैं अपने वलीमे के लिए कोट बनवा रहा था. अबे अब वलीमा हो चुका मेरा 16 साल पहले यार, क्या बातें कर रहे हैं यार. और जैकेट सिलवानी है ना, वलीमे में जैकेट कौन पहनता है, वलीमे में तो लोग प्रॉपर 2 पीस, बल्कि आजकल तो 3 पीस एक बार फिर से जो है ना वो इन हुआ हुआ है. सो बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. ज़ीशान बयानी साहब कहते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द ईयर गॉन बाय इन पाकिस्तानी पॉलिटिक लैंडस्केप, मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर द बेटरमेंट. सी इस जो गुज़श्ता साल जो गया है, जो पिछला साल गुजरा है, सियासी तौर से आई थिंक इसको ये देखा जाए कि इमरान खान मैनेज टू सर्वाइव. आई मीन सुबह बड़ा अच्छा ट्वीट आया था ना, किसी ने कहा था कि क्या हमारे जो ये टीवी एंकर्स हैं ये अपने चीज़ों का ऑडिट भी करते हैं कि मैंने क्या बातें की थी और हुआ क्या. यानी ऐसे मकामात कई दफा पे आए जहाँ पे आपको लगा कि बस अब ये गए और फलाना गए. मार्च में हुकूमत जा रही है, सितंबर में जा रही है, अक्टूबर में जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बजट अप्रूव नहीं होगा, हुकूमत बजट अप्रूव कराने में फेल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इमरान खान हैज मैनेज टू सर्वाइव, ऑलबीट ही हैड परहैप्स अ वेरी डिफिकल्ट ईयर. इन्फ्लेशन वॉज द मेन रीजन. ज़ाहिर दुनिया भर में इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो तबाही फैला रहा है. सो हाउ कुड पाकिस्तान बी एनी डिफरेंट, अ कंट्री जो कि जैसे कल हमने बात की थी अपने प्रोग्राम में कि बाई डिज़ाइन पाकिस्तान हैज़ बिकम अ वेरी इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री. बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पाकिस्तान बाई डिज़ाइन हमारी अपनी हरकतें, हमारी अपनी, और मैं ये प्लीज़ पिछले 2-3 साल की बात नहीं कर रहा, ये हमारे DNA में ये चीज़ अब आ गई है कि जी जो भी चाहिए इम्पोर्ट कर लो, कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना, ये सारी चीज़ें ये हमारा सिवाय चंद पीरियड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाकिस्तान में हमने अपने आप को जो है ना वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट रखा है. स्पेशली पिछले 10-15 साल में जो हरकतें हुई हैं वो तो आप सबके सामने है. अब क्या हुआ है कि इनके लिए जाहिर है ये मुश्किल साल था, इन्फ्लेशन बिग किलर. लेकिन अगर आप मुझसे बोलें कि एक सिंगल बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट दैट ही फेस्ड, और अगर आप मुझसे ज़ाती तौर से, आई एम नॉट अ PTI वोटर और अ सपोर्टर फॉर दैट मैटर, बट आपको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जनरली सपोर्ट करता हूँ, और जो मुश्किल डिसीजन इकोनॉमी के बारे में ये ले रहे हैं उसके बारे में मेरा हमेशा ये कहना है कि इन द लॉन्ग टर्म बेटरमेंट ऑफ द इकॉनमी ये हैं. अब देखें, अब 4 साल बाद 5 साल बाद क्या होगा, hindsight is a beautiful thing, and I कहते हैं hindsight is 2020. यार मैं देख रहा था कल कोई ट्विटर पे एक मुफक्किर कह रहे थे कि टर्फ यानी स्टेट बैंक जो स्कीम लेकर आया था कोविड के बाद बहुत कम लोन्स के जो मार्कअप की, वो एक डिजास्ट्रस स्कीम थी. लाइक आई मीन ब्यूटिफुल, जब तब चल रही थी सब गंगो हुए थे, नाच रहे थे, वाह जी वाह क्या स्कीम लेकर आया स्टेट बैंक, छा गया है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ये हो रही हैं फलाना. वो एक मौसूफ कह रहे हैं यार टर्फ तो बहुत ही घटिया किस्म की स्कीम थी. अच्छा खैर एनीवे, मेरा ये ख्याल है, सो फ्रॉम ज़ीशान, फ्रॉम बीइंग अ फैन ऑफ द इकोनॉमिक डायरेक्शन दैट दिस गवर्नमेंट वॉज फॉलोइंग, आई थिंक वो जो सेनेट के इलेक्शन में हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई थी, मेरे ख्याल से वो इस साल का सबसे डिजास्ट्रस इस हुकूमत के लिए जो है ना वो चीज थी. बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से इकोनॉमिकली गुजर रहा है, हफीज शेख जो है ना वो उसके लिए परफेक्ट आदमी था जो कि इन हालात को मैनेज कर सकता था. 2 बार इस बंदे ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना वो बीच मंझधार से निकाला है, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आया, और उनका ये इलेक्शन हार जाना और फिर उसके बाद इमरान खान की नजरों में बिल्कुल उनका गायब होके गिर जाना और पता नहीं क्या हुआ, और फिर इंडस्ट्री के एक फेवरेट आदमी को लेकर आना जो कि 6-6.5% GDP ग्रोथ रेट की बातें कर रहा था, 5-6 महीने में उनको रियलिटी चेक मिल गया ना, आ गए ना अब औकात पे सब अपनी. सो मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकली इमरान खान हैज मैनेज टू सर्वाइव, ऑलबीट एज अ लेस पॉपुलर लीडर बिकॉज दिस वॉज एन इन्फ्लेशन, अ वेरी हाई इन्फ्लेशन ईयर. अगले साल के लिए इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है, और हुकूमत को भी अब इस बात का अंदाजा हो गया. देखिए दुनिया भर की हुकूमत, आप अमेरिका में भी सुनते थे, वो ये कहते थे कि जी इन्फ्लेशन इस ये ट्रांजिशनरी इन्फ्लेशन है, यानी वक्ती तौर से बस एक इन्फ्लेशन का एक स्पाइक आया है, एंड थिंग्स आर गोइंग टू गो वेल बाय द फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर. नाउ इवन द अमेरिकन फेड इज सेइंग, अमेरिकन गवर्नमेंट अब ये बात मान रही है दैट दिस इन्फ्लेशन इज नॉट ट्रांजिशनरी इन नेचर, इट इज गोइंग टू स्टिक अराउंड, ये रहेगी कुछ अरसे के लिए, फॉर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, जब तक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन दुनिया में ठीक नहीं हो जाती, और खुदा जाने ये पता नहीं कितने कोविड के और वेरिएंट्स आते हैं, आने वाला क्या होता है सिलसिला. तो ये इनके लिए अगला साल सबसे बड़ी जो इनका चैलेंज रहेगा. मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत कहीं जा रही है, ये -1 फॉर्मूले एंड ऑल नहीं, ऐसा कुछ मुझे होता हुआ नहीं लग रहा. हाउएवर ये अपने आप को अनपॉपुलर कर सकते हैं, बट ये भी याद रहे कि अगला साल IMF के साथ भी पाकिस्तान का आखिरी साल होगा. इट वॉज अ 3-year प्लान आपका जो $6 billion का था, और उसके बाद फिर बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फुल ईयर ऑफ इमरान खान्स गवर्नमेंट. सो ये डर ये मुझे लग रहा है कि ये एक बार फिर से उसी ट्रैप में ना चले जाएं जिसमें काफ़ी सारी और हुकूमतें हमारी अपने आखिरी साल में, जनरल मुशर्रफ भी गए थे, नवाज शरीफ साहब भी गए थे, उनकी जो हुकूमत थी खाकान अब्बासी एंड ऑल, और कहीं ये भी ना चले जाएं, और वो ये होती है कि जी आप सब्सिडाइज करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें सस्ती करना शुरू, हुकूमत अपने पल्ले से जो है लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाना शुरू कर देती है. चीज़ों की इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की इंक्रीज को पास ऑन नहीं किया जा सकता. आई थिंक द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू सेव इमरान खान नेक्स्ट ईयर इज द इन्फ्लेशन. किस हद तक ये इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं. सो चलें जी, ये कोई प्लान टॉपिक नहीं था, बट सिंस माई फ्रेंड आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई थॉट आई शुड शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट. तो लास्ट ईयर वेरी चैलेंजिंग, द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड हफीज शेख लूजिंग द इलेक्शन एंड देन इकोनॉमी की जो बागदौड़ जो उसको बहुत अच्छी तरह वो अपने कंट्रोल में ले चुके थे. एंड अ पर्सन हु वुड हैव डन अ ग्रेट जॉब इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स वॉज नो वेयर टू बी सीन. आई मीन बिल्कुल गायब गायब, मैंने तो उनका जिक्र नहीं सुना यार. किधर है हफीज शेख साहब, सीरियसली स्पीकिंग. Alright, that was Junoon Pyar Bina, the live version of this song, and what a beautiful song. Hope you guys enjoy that, and why not? Alright, 8:42 हो चुके हैं. Sunrise Show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. और यार ये कोकोमो वाला एड जो है ना, ये कह रहे हैं भाई ये कंफर्म्ड आपकी आवाज में, ये नहीं है भाई मेरी आवाज में कोकोमो वाला एड. यार मैं आपको कोकोमो से बिस्कोनी वालों से ये अपना इनसे ना मैं आपको एक सर्टिफिकेट लेके दे दूंगा ये कि ये मेरी आवाज नहीं है ये यार. और ये तो उन्होंने वो है ना आई थिंक आसिम मजहर है और शायद वो जो रैप सिंगर्स आजकल बड़े पॉपुलर हुए हैं शायद उन्होंने गाया है ये. उसामा फजल कह रहे हैं यही है. शारिक हुसैन साहब कहते हैं आज अपनी आवाज में कोकोमो सॉन्ग गा दें, हम भी साथ देंगे आपका. ओके ठीक है भाई. मेनाज लाइक दैट सॉन्ग, शी सेज आई लव दिस सॉन्ग. या प्यार बिना लिस्टिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग विद नीडो. ऑलराइट नवीद, गुड मॉर्निंग आपको भी. और जफर अहमद खान साहब कहते हैं आई हैव स्विच फ्रॉम कराची कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू ऑलिव फार्मिंग इन चकवाल. वाओ, अ प्योर कराचीआइट नाउ एंडेवरिंग टू बिकम ऑर्गेनिक ऑलिव फार्मर. आई वेलकम ऑल एस्पायरेंट टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड बिकम एंटरप्रेन्योर्स. कॉन्टेक्ट मी फॉर मोर डिटेल्स. दिस इज सो ब्रिलियंट. मैं भाई जफर साहब के ट्वीट को मैं रीट्वीट कर रहा हूँ. सो एनी वन ऑफ यू हु इज फेड अप ऑफ हिज जॉब नाउ एंड वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ एंड दैट डिफरेंट थिंग कैन बी ऑलिव फार्मिंग. आपको पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा मराज जो है वो इस सेक्टर को दी जा रही है और पाकिस्तान अपना ऑलिव जो है वो अब प्रोड्यूस करना शुरू भी हो गया. आई थिंक द ऑलिव इज आउट देयर इन द मार्केट राइट नाउ. सो वी डोंट हैव टू, अब मुझे नहीं पता कितनी क्वांटिटी जफर साहब ज़रा बेहतर बताएंगे. मैंने बहरहाल मैंने रीट्वीट कर दिया है. अगर किसी को जैतून की काश्त करनी है तो जफर साहब से जरा रब्ता करें. चकवाल में है सर, क्या बात है सर, छा गए आप. एंड देन क्या सीन है, रहमतुल्ला कहते हैं अदील भाई पता नहीं क्या करूँ, कौन सी सेटिंग है ट्विटर ट्रेंड्स की के आप जो ट्रेंड बताते हैं. भाई आप जो ट्रेंड देख रहे हैं ना वो टॉप 10 ट्रेंड नहीं है, वो टॉप ट्रेंड्स नहीं है, वो तो टॉपिक्स हैं विच आर ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान. आप सेटिंग पे जाइए, ऊपर जो वो एक पहिया बना हुआ है ना उस पे आप जाइए और जाके उसमें अपनी सेटिंग्स चेंज करें. ओके एंड देन वी हैव गॉट इरफान अली शाह, गलियात 2 days. वाओ ब्यूटीफुल वीडियो उन्होंने शेयर किया है. गलियात में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और ये वीडियो मैंने रीट्वीट भी कर दी है. इकबाल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रावलपिंडी, एनी न्यूज अबाउट हज 2022? आल्सो वांट टू हियर सनसेट विद अदील व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस. सर ना करें ना, सर ना करें ना, कितना सुन लेंगे, कितना सुनेंगे मेरा शो यार. अली इमरान साहब कहते हैं टर्फ वॉज नॉट अ डिजास्टर इनिशियली व्हेन इट वॉज फॉर स्टार्टअप्स, बट देन गवर्नमेंट अलाउड टेक्सटाइल सेक्टर एंड फॉर BMR पर्पस. टेक्सटाइल ऑलरेडी इंजॉइंग ITFF एंड टेक्सटाइल लेसर वैल्यू सेगमेंट took away 50% of turf. Big corporates got the loan. Ajab thing in turf, the main idea of turf wasn't like startups. I mean, it was never for startups. I mean, startup by definition, it is a company which has just started. I mean, turf was there for ye jo state bank ki policy thi. Ye established company ke liye bhi thi. Companies which have been there around. But Pakistan mein hota yehi hai. Ki ye jo humara textile sector hai na, aapko pata hai ki is waqt inki hukumat ke saath ek baar phir se masla chal raha tha. और गैस की प्रोविजन के हवाले से और गैस प्रोवाइड करने के हवाले से इनको. और बहरहाल जी सुनने में आ रहा है कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो निकाल लिया गया है इस चीज़ के हवाले से. अब हुकूमत ही हल्के अपनी फतह कंसिडर कर रहे हैं, एप्टमा वाले खुश नज़र आ रहे हैं कि आई रियली डोंट नो. बट यार ये जो है ना, ये हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वाकई इसको ना कुछ ज़रा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है. इंतहाई पाकिस्तान में एक फेवरेबल माहौल जो इनके लिए क्रिएट किया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इंडस्ट्री जो है ना वो उसके आसपास भी है, बट उसके बावजूद एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट इंडस्ट्री. और अगर आप ये सहारे इनसे छीन लेंगे तो फिर ये किस तरह सरवाइव करेंगे, कभी कभार आप ये देख के हैरान रह जाते हैं और सोच के ये हैरान रह जाते हैं. अल्लाह मालिक है. बहरहाल जी हमारे दोस्त इमरान अमीन साहब कहते हैं टर्फ वॉज अ जीनियस आइडिया एंड विल रीप फ्रूट इन द कपल ऑफ ईयर स्पेशली फॉर ऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स. देख लेते हैं जी सर, 2 साल में देख लेते हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ती है. असान शेख हमारे दोस्त भाई, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. आसान माशाल्लाह, आज शादी की सालगिरह आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेल डन. जाहिद खान साहब कहते हैं, सलाम, टोटली अग्री कि पब्लिक के पास पैसा है शादियों पर खर्चा करने के लिए. एक बहुत मशहूर लाहौर के स्किन प्लस प्लास्टिक स्पेशलिस्ट हैं, लाहौर के डॉक्टर. वुड यू बिलीव कि एक एक क्रीम 15,000 पर पेशेंट, 50,000 प्लस जाता है, स्टिल ही हैज लॉन्ग क्यूज. Unbelievable यार. खैर, I mean it's quite believable actually. अर्शद गुमरो कहते हैं, this is what I say. See restaurants, see malls, see bazaars. You won't observe महंगाई. बाकी आवाम को माइक दे दें, हुकूमत पर गालियों की किताब छाप देंगे. ऐसे ही है यार. मुझे ऐसा लगता है हमारे जो लाइफ स्टाइल्स की जो हैबिट होती है ना, वो बहुत स्टिकी होती है. उनको चेंज करना इतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से शायद पीपल मे बी आर लोग अपनी जो अपनी जो सेविंग्स हैं, लोग उनको हिट मार रहे हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने को तैयार नहीं है. आई मीन दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन सी, अदरवाइज आई डोंट. ऑलराइट जी, हमारे दोस्त किरण पंडारे साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंड गुड टू हैव यू बैक किरण भाई. ये पुणे में प्रोग्राम सुनते थे पहले, आज काफी दिनों बाद मुझे ट्यून इन करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हैं, इट्स ग्रेट दैट पाकिस्तान हैव स्टार्टेड कल्टीवेटिंग ऑलिव्स. वाओ. ओके, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आज राजेश खन्ना की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी, उनकी बर्थ. क्या बात है, राजेश खन्ना क्या एक्टर और क्या गाने उनपे फिल्म आए हुए थे यार. मैं मिस करता हूँ कभी कभार वो गाने चलाना, बिल्कुल ऐसे ही है. इसके अलावा आसमा अवान कहती है, भाई आपके ख्याल में गवर्नेंस के लिहाज से केपी के बेहतर है या सिंध? आसमा, क्या ये मजाक का सवाल है या क्या है आप? आर यू एक्चुअली सीरियस यार? क्या बातें कर रही हैं आप यार? गवर्नेंस का सिंध से किसी का कंपैरिजन ही नहीं है यार. यहाँ तो हम बेहतरीन लेवल की, मैसाचुसेट्स टाइप की गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नेंस चल रही है यार. इबाद अहमद खान साहब, ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं. बिल्कुल जी, ऑयल प्राइसेस बहुत शदीद ऊपर आई हैं और ब्रेंट क्रूड जो है वो $80 टच करने पर बैठा हुआ है. तो अगर आपको लग रहा था कि इस महीने के एंड पे कोई ऑयल प्राइसेस के हवाले से कोई हमें अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, तो आप भूल जाएं, बिकॉज ऑयल प्राइसेस हैव मेड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक. और नॉट गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान. ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, बहुत ज़बरदस्त इजाफा जो है. ये जो क्रिसमस ब्रेक के बाद जो मार्केट्स खुली हैं, अजीब क्रेजी सी होकर खुल गई है मार्केट यार, क्या कर सकते हैं. ये चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. एंड सो टर्फ के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले भाई सादिया अली और फायजा अली को प्रोग्राम में अपने खुशामदीद कहते हैं. और गुड लक यार आपकी गाड़ी के हवाले से, कि उनकी गाड़ी आज तंग कर रही है और कहती है मीटिंग है आज, लेट ना हो जाए. चलिए अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से पहुंचाए जी आपके सही टाइम पे. नवीद किदवाई साहब ने प्रोग्राम में पहली बार पार्टिसिपेट किया है और 6 साल से प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. इमरान अमीन कहते हैं, अदील भाई, द रिफाइनरीज आर शट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड एज गवर्नमेंट हैज बॉट रिफाइंड फ्यूल फॉर द बेटर प्राइस. आई बिलीव दिस इंटरनेशनल प्राइस हाइक मे नॉट हैम्पर द ऑयल प्राइस इन पाकिस्तान. वेल लेट्स सी. लेकिन कोई आपको बेनिफिट पास ऑन होता हुआ तो बहरहाल अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि ख्याल किया जा रहा था क्रिसमस ब्रेक से पहले. लग रहा था हुकूमत शायद 2-3 रुपए पास ऑन कर दे, लेकिन इस वक्त ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा. आसिफ साहब ने मैसेज किया है कराची से, कहते हैं, टर्फ वॉज फॉर ऑल इंडस्ट्रीज बट ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, लाइक इफ दे आर एडिंग अ न्यू प्रोडक्शन लाइन विच इज नॉट ऑलरेडी देयर. I am telling you man, SBP scrutiny was really hard on it and I have seen many applications declining where companies even giving request for lifter import. So although it increased our import numbers, but definitely it will give results. I have seen company proving it that it is a new project and our department scrutinized it before putting it. देखिए यार आसिफ, मैं खुद उस school of thought से belong करता हूँ जो कि ये समझता हूँ कि turf was a very गुड आइडिया और उसका पाकिस्तानी कंपनियों ने बहुत बेनिफिट उठाया. एंड इफ द बैंक्स हैव बीन एबल टू स्क्रूटनाइज जो एप्लीकेशंस आई हैं फॉर द कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड ऑल, आई थिंक दैट इज गोइंग टू रीप सम बेनिफिट्स. एंड आई रियली होप लोगों को जो असल गुस्सा आता है, जो लोगों को गुस्सा आता है ना, वो हमारी कुछ सर्टन ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी बहुत चहीती इंडस्ट्रीज हैं और उनको मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट पता नहीं क्या करे उनको जो है कि खड़ा हो जाओ खुदा के लिए, कंपेरेटिव बन जाओ, दुनिया से मुकाबला करो. कहते नहीं, ये भी सब्सिडी चाहिए हमें, तो एनर्जी भी सस्ती चाहिए, हमें तो जी एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के भी हमें वो चाहिए, नहीं हर बेनिफिट उनको मिला और उस पे सोने पे सुहागा उनको टर्फ वाला बेनिफिट भी मिला. बहरहाल जी बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बाय नेचर आई रियली होप दैट ये जो टर्फ का फायदा इन कंपनियों ने जो है ये उठाया होगा और अल्लाह करे कि वाकई जो न्यू आबिद साहब थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट सर, गुड टू हियर फ्रॉम यू. आई रियली होप कि कंपनियों ने इसका जो टर्फ का जो बेनिफिट लिया है इसको हमने सही मानों में स्टेट बैंक की स्क्रूटनी टाइड होगी इसमें, जैसा कि आसिफ ने हमें भी बताया कि ऐसा है. सो लेट्स जस्ट होप कि या आई मीन जो नई प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइन में आई है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े इससे इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी और सिर्फ जो बेनिफिट हमें मिले वो इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीजेस का जो है वो ना मिल रहा हो. ठीक हो गया. ऑलराइट, जल्दी से जाते जाते जो है वो ग्रीन लाइन के हवाले से बात करते चलें. थैंक यू सो मच अक्सा जो है वो रोजाना तकरीबन हमारे साथ इनपुट शेयर कर रही हैं अबाउट द ग्रीन लाइन और उनका जो ट्वीट है उसको मैंने एक बार फिर से रीट्वीट कर दिया है और उन्होंने बताया यही है कि अभी भी बहुत थिन ट्रैफिक है, बहुत कम लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे यानी आधे से ज़्यादा जो है वो आधे से ज़्यादा जो स्टेशन हैं वो अभी तक एक्चुअली ऑनलाइन हुए ही नहीं है. सो यू गाइज कैन You guys can see that जो उन्होंने ये भेजा है अपडेट हमें भेजी अक्सर ने. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. इसके अलावा हमारे एक और स्टेट बैंक के दोस्त का मैसेज आया, मैं उनका नाम नहीं ले रहा बिकॉज अक्सर जो है ना अच्छा ओके जबरदस्त थैंक यू सो मच सर. सो भाई आप पे हमें पूरा एतमाद है. ठीक है, तो स्टेट बैंक ने आई एम प्रीटी श्योर एक बड़ा जबरदस्त जो है ना वो काम किया होगा और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह सही तरीके से जो है ना वो हमारे इंडस्ट्रीज ने उसको इस्तेमाल किया होगा. ओके जी, रिहान लोधी साहब जाहिर है मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हैं कि मार्केटों में रश है और रेस्टोरेंट्स में रश है, इसका मतलब ये कि सिचुएशन मुश्किल नहीं है. देखिए इन एवरी सिचुएशन रिहान देर आर विनर्स एंड देर आर लूजर्स, कुछ जीतने वाले होते हैं और कुछ हारने वाले होते हैं. और अभी मुश्तबा नकवी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड ऑल, आपका बिल्कुल ठीक कहना है. द पुअर आर गेटिंग पुअर, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनकी स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ गई है. लेकिन ये कह देना कि अक्रॉस द बोर्ड, देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया, ये कह देना कि अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में एक डिजास्टर आ गया और इकोनॉमी जो है वो इस वक्त एक डिक्लाइन की सी कैफियत में, और ये है मैं डे वन से ये बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है यार. बट बहरहाल सिंपल सी बात है, इट इज प्योरली अ मैटर ऑफ विच साइड ऑफ द डिवाइड यू आर. मे बी फॉर यू इस वक्त एक डिजास्टर्स, अगर आप मुखालिफ साइड में तो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी की गवर्नमेंट की आपको लगेगा कि बस सब कुछ तबाह हो गया और बस मुल्क बिल्कुल इस वक्त कोलैप्स होने के दहाने पर बैठा हुआ है. लेकिन दूसरी जानब आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने पिछले स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में बहुत रेजिलियंस शो की है. मैं हफीज शेख साहब का फैन बॉय इसलिए नहीं था यार, क्योंकि उन्होंने ही मैनेज थिंग्स रियली वेल ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड डॉक्टर रजा बाकर, आजकल उनको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है और मैं ये देख रहा हूँ पूरी कैंपेन उनके खिलाफ जो है वो इस वक्त चल रही है, विच इज ऑफ कोर्स विच इज वेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड एज वेल, कि जी आईएमएफ के हम कंट्रोल में आ गए, आईएमएफ के कदमों में चले गए, स्टेट बैंक पे आईएमएफ का कब्जा हो गया एंड स्टिल. इस तरह की नॉनसेंस ये बातें आप सुन रहे होते हैं जो कि पूरी पूरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड. सो आपका एनालिसिस जाहिर है देर आर बायसेस एंड वो बायस जो है वो काफी ज्यादा इसको आपके पर्सपेक्टिव को डिटरमिन करेगी. बहरहाल जी अभी फिलहाल जो है हम यहाँ पर रुकते हैं बिकॉज प्रोग्राम खत्म करने का टाइम हो गया, बिकॉज टाइम चेक का टाइम हो गया. एंड डिस्कशंस टुडे गाइस एंड थैंक यू, आई विश आई हैड मोर टाइम टू टॉक अबाउट दिस मैटर बिकॉज आप लोगों का इनपुट बहुत जबरदस्त होता है एंड मुझे कुछ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.